अपना नया काम संभालने के लिए दीवा पेलिंग आ चुकी थी और उसके साथ में शिव भी था। शिव के साथ होने पर उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था और वो कम उम्र में भी काफी समझदार बच्चा था। दीवा और बाकी मेडिकल स्टाफ जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उसके ओनर ने उनके लिए एक छोटी सी वेलकमिंग पार्टी रखी थी। इस बीच दीवा के पेट में दर्द होने लगा था। शिव को बाकी लोगों के बीच छोड़कर दीवा अपने लिए दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई। वहां का ओनर किसी काम से बाहर गया था और उसकी वाइफ को दवाइयों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। उसने दीवा को खुद की दवाइयां लेने के लिए अंदर स्टोर रूम की तरफ भेज दिया था। जब दीवा अंदर अपने लिए दवाइयां देख रही थी, इस दौरान एक और कस्टमर वहां पर आया। दीवा को लगा कि स्टोर ओनर की वाइफ शायद दवाइयां नहीं दे पाएगी और एक डॉक्टर होने के नाते उसने मदद करनी चाहिए। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो उसके सामने आर्यांश खड़ा हुआ था। इस तरह अचानक 3 साल बाद आर्यांश को अपने सामने देखकर दीवा को झटका सा लगा। दीवा खोई हुई निगाहों से आर्यांश की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा साइड से उसे दिखाई दे रहा था। आर्यांश अब पूरी तरह से बदल गया था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि किसी वक्त में वो कपूर इंटरनेशनल का CEO था। उसने ब्लैक फॉर्मल पैंट्स के ऊपर ओपन लूज सफ़ेद स्वेटर पहना हुआ था, जो ब्रांडेड तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। पहले उसके बाल सलीके से सेट रहते थे, वहीं अब आर्यांश के बाल बेतरतीब होकर उसके माथे पर बिखरे हुए थे। आर्यांश के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने एक रिसीट ओनर की वाइफ के सामने रखी और जल्दबाजी में दोबारा कहा, मुझे ये अभी चाहिए। ठीक है, दे देती हूँ, सिर्फ उनकी तबीयत का सोचकर, वरना तुमने पिछले 2 बार से दवाइयों के पैसे नहीं दिए हैं, उस औरत ने जवाब दिया और फिर सामने लिफाफे में रखी दवाइयां आर्यांश के सामने रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से ही दवाइयां तैयार करके रखी गई हों। मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगा, थैंक यू सो मच, और अंकल को भी थैंक्स कहिएगा, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी शांत, दबी और बुझी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बीते सालों में वो आर्यांश कपूर कहीं खो गया था। पेलिंग कोई बड़ी जगह नहीं थी, एक छोटा टाउन था जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। उन्हें थैंक्स कहने के बाद आर्यांश वहां से चला गया, जबकि दीवा एक नई ही उलझन में पड़ गई थी। आर्यांश के पास पैसे नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है, और वो ये दवाइयां किसके लिए लेकर जा रहा है, दीवा ने मन ही मन कहा। आर्यांश के जाने के बाद दीवा ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकती थी, उसे शिव के पास भी लौटना था। वो जल्दी से बाहर आई, उसने खुद की मेडिसिन ले ली थी, पर इस वक्त उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे जो आर्यांश से जुड़े हुए थे। दीवा ने अपनी दवाइयों के पैसे चुकाए, वो वहां से जाने को हुई तभी उसके दिमाग में उस औरत की बात घूम ली थी जिसने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आर्यांश ने पिछली 2 बार की दवाइयों के पैसे नहीं दिए थे। दीवा वहीं पर रुक गई तो स्टोर ओनर ने हिचकिचाकर पूछा, आपको कुछ और चाहिए मैडम? नहीं, दीवा ने तुरंत सिर हिला दिया था। कुछ पल रुककर वो झिझकती आवाज में बोली, अच्छा थोड़ी देर पहले जो आए थे आपने कहा कि उन्होंने पिछली 2 बार की दवाइयों के पैसे नहीं दिए हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने हैं, मैं दे देती हूँ। आप आर्यांश की बात कर रही हैं? स्टोर ओनर हल्का मुस्कुराकर बोली। दीवा के हामी भरने पर उसने कहा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हमें पैसों की फिक्र ही होती तो हम पहले से उसके लिए दवाइयां तैयार करके नहीं रखते। देर सवेर से ही सही वो लौटा देगा, और वो तो काफी समय से यहाँ पर रह रहा है तो सब कोई उसके बारे में जानता है, हमें उसके उधार की फिक्र नहीं है, और आप भी मत कीजिए। तो वो मेडिसिन किसके लिए लेकर गया है, दीवा ने आगे पूछा। अपनी माँ के लिए लेकर गया है, इन दिनों उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, कौन जाने अब उनके पास में कितना समय बचा है, फिर भी आर्यांश उनका इलाज करवा रहा है, स्टोर ओनर ने बताया। दीवा आगे कोई सवाल पूछती उससे पहले स्टोर ओनर ने कहा, अच्छा बंद करने का समय हो गया है, आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ लेने आ सकती हैं, और दूसरी बात पैसों की चिंता मत कीजिए, यहाँ के लोग पैसों से नहीं बल्कि रिश्तों से एक दूसरे को जानते हैं। दीवा ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला ही था कि तभी अचानक से आर्यांश उसके सामने आ गया था। हड़बड़ाहट में आर्यांश सुमन की रिपोर्ट्स शॉप के काउंटर पर भूल गया था। दीवा आर्यांश से टकराते हुए मुश्किल से बची थी और उसने जल्दी से अपने पैर पीछे ले लिए थे। जिस तरह थोड़ी देर पहले आर्यांश को अचानक अपने सामने देखकर दीवा को झटका लगा था, तो कुछ ऐसा ही हाल आर्यांश का था। दोनों खोए हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगले ही पल आर्यांश ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। आर्यांश को दोबारा वहां देखकर स्टोर ओनर की नज़र वहां रखी फाइल पर गई। उसने जल्दी से उस फाइल को उठाया और आर्यांश को देते हुए कहा, तुम इसे यहां भूल गए थे, बातों के चक्कर में मेरा भी ध्यान नहीं गया। आर्यांश ने जल्दी से फाइल उसके हाथ से ली और हल्के से सिर हिला दिया था। फिर उसने दीवा की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, कैसी हो तुम दीवा? इससे पहले कि एक बार फिर से आर्यांश को अपने सामने देखकर दीवा के जज्बात उस पर हावी हो जाते, वो जल्दी से बोली, मुझे लेट हो रहा है। दीवा आर्यांश के साइड से वहां से बाहर निकल गई थी और तेज कदमों से चलते हुए वापस जाने लगी। वहीं आर्यांश अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ था। क्या तुम जानते हो उसे? तुम्हारे बारे में काफी कुछ पूछ रही थी वो, स्टोर ओनर ने आर्यांश से पूछा। हाँ, एक पुरानी दोस्त है, आर्यांश ने जवाब दिया। अच्छा, उसने बताया कि वो एक डॉक्टर है, रवि यहाँ नहीं थे तो मैंने उसे खुद से दवाइयां लेने को बोल दिया था, तुम तो जानते हो मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, स्टोर ओनर ने बताया। आर्यांश ने उसे ज्यादा बात नहीं की और फाइल लेकर वहां से चला गया था।
वहीं दीवा भी वापस शिव के पास लौट आई थी। पार्टी अभी भी चल रही थी और वो लोग नाच गाने में लगे हुए थे। दीवा ने शिव का हाथ पकड़ा और उन्हें पार्टी देने वाले बुजुर्ग कपल को थैंक्स बोलने के बाद वो अपने घर में आ चुकी थी। दीवा का चेहरा उतरा हुआ था। शिव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, सभी बाहर ही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ और दवाई लेने के बाद सब सही हो जाएगा। चलो अब सोते हैं, मैं काफी थक गई हूँ, दीवा ने उसे टाल दिया था। शिव ने भी ज्यादा जिद नहीं की। बेडरूम में शिव दीवा के बगल में सोया हुआ था और दीवा उसके बालों को हल्का हल्का सहला रही थी। दीवा ने दवाइयां तो ले ली थी पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज अचानक आर्यांश को अपने सामने देखकर दीवा का दिल बुरी तरह बेचैन हो गया था। दीवा ने मन ही मन कहा, क्या ये सब उसका दिखावा था? उसे पता है क्या कि मैं यहाँ किसी प्रोजेक्ट के चलते आई हुई हूँ? वो जानबूझकर सिंपथी गेन करने के लिए भी ये सब कर सकता है, पर वो अलग लग रहा था। क्या सच में इन 3 सालों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो दवाइयां तक के पैसे नहीं दे पा रहा था? ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? आर्यांश के दादाजी उससे नाराज जरूर थे, लेकिन उसके मॉम डैड और बहन नहीं। वो आर्यांश को इस तरह अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। देवा इसी उधेड़बुन में खोई हुई थी, शिव को नींद आ चुकी थी। सिर्फ अकेले वो परेशान नहीं थी, आर्यांश का भी यही हाल था। वो अपने घर पहुंच चुका था जो उस मेडिकल स्टोर से 5 मिनट की ही दूरी पर था।
बिस्तर पर सुमन लेटी हुई थी और आर्यांश के आने का इंतजार कर रही थी। सुमन को इस तरह आर्यांश पर बोझ बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आर्यांश ने उसे कभी कुछ महसूस होने ही नहीं दिया। वो उसकी हर तरीके से देखभाल कर रहा था, चाहे उसके लिए उसे दिन रात भी काम क्यों ना करना पड़े। कमरे के एक तरफ फायरप्लेस बना हुआ था जिसकी आग उस कमरे में गर्माहट पैदा कर रही थी। आर्यांश को देखते ही सुमन बिस्तर पर बैठी और धीमी आवाज में बोली, मैंने आपसे कहा था कि मैं ठीक हूं, फिर इतनी ठंड में बाहर जाकर ये दवाइयां लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप दवाइयां नहीं ले रही हैं और मैंने आपसे कहा था कि आप इस बारे में मुझसे नहीं छुपाएंगी कि आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप मेरे जीने का इकलौता सहारा है और आपको ठीक करने के लिए मुझे 2 काम एक्स्ट्रा भी करने पड़े तो मैं कर लूंगा, आर्यांश ने हल्की सख्त आवाज में कहा और सुमन के सामने दवाइयों का पैकेट बढ़ा दिया था। सुमन की आंखों में अफसोस के भाव भर आए थे। आर्यांश कितना टैलेंटेड था ये उससे छुपा हुआ नहीं था। पृथ्वी कपूर ने भी आर्यांश की काबिलियत को देखते ही उसकी डिग्रीज और बाकी अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स उसे वापस लौटा दिए थे ताकि वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ सके। सुमन को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आर्यांश एक छोटी जगह पर रह रहा था और ऐसे काम कर रहा था जिनके लिए वो बिल्कुल नहीं बना हुआ था। आराम कीजिए, मुझे जाना होगा, आर्यांश बोला और मफलर से अपने सर और मुंह को कवर करने लगा। बाहर बहुत ठंड है, क्या रात को भी काम करना जरूरी है? सुमन ने कांपती आवाज में कहा, उसकी आंखें नम होने लगी थीं। मैं ज्यादा देर तक सो नहीं पाता हूँ, ओवरथिंकिंग करते हुए रात को करवटें बदलने से अच्छा है कि कुछ कर लूं ताकि हमारी लाइफ आसान हो जाए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और आगे से अगर आपने इस तरह की लापरवाही की और मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगा, आर्यांश ने सुमन को प्यार से डांटते हुए कहा। आर्यांश जाने के लिए पलटा ही था कि तभी पीछे से सुमन ने कहा, रुकिए मिस्टर कपूर। आर्यांश सुमन की तरफ पलटा तो सुमन ने अपने बिस्तर के पास की दराज से दस्ताने निकाले जो उसने खुद थोड़े दिन पहले बुनने शुरू किए थे। उसने उन्हें आर्यांश को देते हुए कहा, इन्हें पहन लीजिए, ये गर्म रहेंगे। आर्यांश ने पहले से ग्लव्स पहने हुए थे, फिर भी सुमन के कहने पर उसने उन्हें निकाला और उसके दिए हुए ग्लव्स को पहन लिया था। सुमन को एक बार फिर ध्यान रखने की हिदायत देकर आर्यांश बाहर आ गया था। काफी देर चलने के बाद आर्यांश टाउन के बाहर की तरफ बनी एक फैक्ट्री में पहुंचा जहां अभी अभी सामान से भरा हुआ ट्रक आया था। आज देर कैसे कर दी, तुम्हारे कहने पर मैंने एक्स्ट्रा आदमी भी नहीं बुलाए, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आर्यांश को देखते ही फैक्ट्री का सुपरवाइजर बोला। आर्यांश के अलावा सिर्फ एक आदमी और था जो उन सामान से भरे हुए भारी बॉक्सेस को उठाकर अंदर रख रहा था। आर्यांश चुपचाप अपने काम पर लग गया। उसकी आंखें इस वक्त बेहद ठंडी थीं और उसकी आंखों में दीवा का ही चेहरा घूम रहा था। मैं इस सजा का हकदार हूं, यही दर्द और तकलीफ मुझे ये भूलने की इजाजत नहीं देंगे कि मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, आर्यांश ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा। ये मुश्किल काम और मुश्किल जिंदगी आर्यांश ने अपनी मर्जी से चुनी थी ताकि वो खुद को सजा दे सके। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, समीक्षा में किसी ने कहा था कि ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट आर्यांश का है तो भाई उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन का भी बिल चुका सके। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुरू करना तो दूर की बात है, बाकी खुद के लिए तकलीफें और दर्द खुद आर्यांश ने किया है तो कह सकते हैं कि अब सच में उसे अपने किए पर पछतावा है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।